ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने सदा ही मालदीव के लिए प्रथम संकट मोचक की भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने सदा ही एक पड़ोसी के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने कहा कि भारत ने मालदीव के लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पेयजल उपलब्ध कराया और कोविड के दौरान टीके भी दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी पड़ोस प्रथम नीति और सागर विजन में भी मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर मोइज़ू ने कहा कि उन्होंने तथा प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की सफल विकास यात्रा पर नजर डालते हुए विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मालदीव में रुपे कार्ड भुगतान का भी शुभारंभ किया गया। दोनों राष्ट्रों के बीच भ्रष्टाचार से निपटने, न्यायपालिका, युवा तथा खेल के क्षेत्र सहित कई समझौते भी हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार के बेहतर केंद्र राज्य समन्वय से देश से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृहमंत्री ने कहा कि नक्सली हिंसा की घटनाएं 16,000 से घटकर लगभग 7,700 हो गई हैं। श्री शाह ने कहा कि नागरिकों और सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी आई है। श्री शाह ने नक्सलवाद से जुड़े सभी युवाओं से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार देश में कृषि प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। नई दिल्ली में किसानों और किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कृषि विकास योजना और फसल बीमा योजना जैसे कई फैसले लिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश लंबरदार ने आकाशवाणी को बताया कि कृषि मंत्री ने किसानों की सभी बातें सुनी और उनका समाधान निकालने का आश्वासन भी दिया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि देश की स्वास्थ्य प्रणाली ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज UHC हासिल करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और आवश्यक सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 12 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90-90 विधानसभा सीटों पर कल मतगणना होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के 873 और हरियाणा के 1031 चुनावी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 वर्षों के बाद हुए चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान हुआ। हरियाणा में 90 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक कोयला खदान में हुए विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ये घटना सुबह भदुलिया कोयला खदान में विस्फोट की तैयारी के दौरान हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कल चेन्नई में हवाई प्रदर्शन के दौरान मारे गए दर्शकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और लोगों की जान अत्यधिक गर्मी और चिकित्सा कारणों से गई। घरेलू शेयर बाजार लगातार छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 638 अंक की गिरावट के साथ 81,050 पर और निफ्टी 218 अंक कम होकर 24,795 पर बंद हुआ। माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। माइक्रो आरएनए एक मौलिक सिद्धांत है जो ये तय करता है कि जीन गतिविधि को कैसे नियंत्रित किया जाए। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की है। 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक और 2015 एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं। 2016 में रियो ओलंपिक में वो चौथे स्थान पर रही थीं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।